आशिका इस वक्त एआर एम्पायर्स की मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। वो अभिमान से मिलने के लिए आई थी। काफी देर इंतजार करने और रचित से हुई गड़बड़ी को सही के बाद अभिमान राजवंश के साथ में मीटिंग रूम में आया। प्रोजेक्ट के बारे में समझाने से पहले अभिमान ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही उसने अपना पूरा नाम अभिमान राजवंश बताया, उसे सुनते ही आशिका को झटका सा लगा। उसके अननोन हस्बैंड का नाम भी यही था, अभिमान राजवंश। अभिमान का नाम सुनने के बाद आशिका सोचने पर मजबूर हो गई थी। उसने अपने मन में कहा, तो क्या ये वही अभिमान राजवंश है जिसके साथ मेरी शादी रजिस्टर हुई है? अगर मैं इससे पूछूंगी तो क्या ये बताएगा? लेकिन लिस्ट में इसी नाम के 10 लड़के और मौजूद थे, और इसकी शक्ल देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये वही अभिमान राजवंश होगा। वो लड़का दिखने में मोटा लग रहा था, जबकि ये काफ़ी फिट है। फिर भी अपना कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मुझे पूछ लेना चाहिए, वरना जब तक इसके साथ काम करूंगी मुझे यही डाउट रहेगा कि ये मेरा पति तो नहीं। आशिका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, तो उसने सीधे सीधे अभिमान से सच पूछने का सोचा। आशिका ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी मीटिंग रूम के दरवाजे की बेल बजी। उन सबका ध्यान उस तरफ चला गया था। एक प्यौन अंदर आया और उसने सिर झुकाकर कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पर आपकी वाइफ आपसे मिलने के लिए आई थी और उन्हें अभी आपसे मिलना है। आशी हमेशा यही करती थी। वो कभी भी अभिमान के ऑफिस आ जाती थी, फिर उसे ये भी परवाह नहीं होती थी कि वो मीटिंग में है या कोई ज़रूरी काम कर रहा है, उसे तुरंत अभिमान से मिलना होता था। वहीं अभिमान की वाइफ का जिक्र होते ही आशिका के सवाल वहीं पर ख़त्म हो गए थे। उसने गहरी सांस ली और मन में कहा, अच्छा हुआ मेरे पूछने से पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया, वरना थोड़ी देर पहले जिस तरह के लोग एम्बैरस हो रहे थे उसी तरह मैं हो जाती। ये मेरा पति कैसे हो सकता है? ये तो पहले से ही शादीशुदा है। उसका कन्फ्यूजन तुरंत ही क्लियर हो गया था जब उसने अभिमान की वाइफ का जिक्र सुना। आशिका को लगा कि अभिमान वहां से उठकर चला जाएगा, लेकिन तभी अभिमान ने सख्त आवाज में कहा, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हूं, जाकर बोल दो कि वेट कर ले, अगर नहीं कर सकती तो घर चली जाए। वो काफी बेरुखी से बात कर रहा था। आशिका नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इट्स ओके मिस्टर राजवंश, आप जा सकते हैं, मैं वेट कर लूंगी, आशिका बोली। आप सुबह से वेट ही कर रही हैं मिस ऐश, आपके लिए ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। बहुत मुश्किल से हमने आपको कॉन्टैक्ट किया था और इतने महीने कॉन्टैक्ट करने के बाद मुश्किल से ही आपने काम करने के लिए हाँ कही है। अगर मैं ये कहूँ कि फिलहाल मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली इंसान आप हैं, तो ये झूठ नहीं होगा। रही बात मेरी वाइफ की, उसे ये समझना होगा कि पर्सनल लाइफ के बीच में प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना इमेच्योरिटी है, अभिमान ने सख्त लहजे में कहा। अभिमान के गुस्से की वजह से प्यौन कुछ नहीं कह पाया और वहां से चला गया था। उसके जाते ही अभिमान बोला, रचित ने आपको थोड़ा बहुत हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया होगा, लेकिन मैं डिटेल में बता देता हूँ। मैं कोई आपसे नॉर्मल हैकिंग या डेटा सिक्योरिटी का काम नहीं करवाने वाला हूँ। मुझे अपनी राइवल कंपनी का डेटा चाहिए ताकि मैं उन्हें बर्बाद कर सकूँ। अभिमान ने सीधे सीधे अपने इरादे बता दिए थे। आशिका के लिए ये नया नहीं था, उसके पास ऐसे प्रोजेक्ट आते रहते थे। आशिका ने गहरी सांस ली और तुरंत नामे सिर हिला दिया था। वो बोली, देन सॉरी टू से मिस्टर राजवंश, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी की बर्बादी की जिम्मेदार नहीं बन सकती हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, दुआ करूंगी कि आपको इस काम के लिए कोई ना मिले। आशिका ने बातों की बातों में अभिमान को ताना दिया और वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन अभिमान इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकता था। वो जल्दी से उठकर उसके सामने गया और उसका रास्ता रोक लिया था। आशिका ने घूरते हुए अभिमान की आंखों में देखा और कहा, तो अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करने पर उतर आए हैं? बिल्कुल नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा बुरा मत फील करो। जिसे मैं बर्बाद करने वाला हूँ वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया हूँ। क्या तब भी तुम मेरा साथ नहीं दोगी? अभिमान बोला। अब वो आशिका को आप कहने के बजाय काफी इनफॉर्मली बात कर रहा था। फिर भी नहीं, आशिका ने जवाब दिया। आशिका वहां से जाने को लगभग तैयार ही थी। अभिमान ने प्लीडिंग आईज से रचित की तरफ देखा। वो जानते थे कि अगर एक बार आशिका वहां से निकल गई तो फिर वो कभी उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा उनका काम कोई और कर भी नहीं सकता था। मैं आपके मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अभिमान ने जल्दी से कहा। और आपको ये क्यों लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? आशिका ने सिर हिला दिया। पैसे नहीं चाहिए तो जो बोलोगी वो सब कर दूंगा। प्लीज, मैंने आज तक किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, अभिमान ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन आशिका ने उसे भी अनसुना कर दिया था। वो अभिमान के पास से निकल गई थी। वहीं आशिका को अभिमान की मीटिंग रूम से निकलते हुए देखकर आशी को कुछ और ही लगा। जब प्यौन ने उसके मीटिंग रूम में होने की बात बताई थी तो वो वहीं पर खड़ी थी। आशी जल्दी से अंदर गई और उसने अभिमान का कॉलर पकड़कर कहा, मुझे धोखा देने का सोच रहे हो तुम? कौन सी वो लड़की जिसके साथ मीटिंग के बहाने इस कमरे में अकेले? आशी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी रचित बीच में आते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पर अकेला नहीं था, और दूसरी बात, तुम्हें बार बार अंदर आने कौन देता है? मुझे रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूं। तुम भूल भी कैसे सकते हो जबकि हमारी शादी तुमने ही करवाई थी, आशी रचित पर चिल्लाकर बोली। हाँ, ये हादसा तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलने वाला, और भूल भी जाऊं तो तुम दोनों मुझे नहीं भूलने दोगे। तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती क्या? तुम्हारी वजह से वो लड़की यहां से चली गई, रचित ने पैर पटकते हुए कहा और फिर आशी काफी पीछे दौड़ते हुए जाने लगा। वहीं कमरे में अब अभिमान और आशी रह गए थे। आशी के इस तरह आने पर अभिमान ने हमेशा उसे डांटा ही था, लेकिन आज वो शांत था। क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आशी ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसे होश आया। उसने तुरंत आशी का हाथ झटक दिया था। बोलो किस काम से आई हो, अभिमान ने सीधे सीधे पूछा। तुम्हें डैड से बात करनी होगी ताकि वो हमारी शादी के लिए मान जाए। यज्ञ अब यहीं पर रहने आ गया है और अब मैं उसकी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है तो मुझे प्रोटेक्ट करो। तुम्हें पता भी है कल उसने मुझ पर हाथ उठाया था सिर्फ इस वजह से कि हमारी शादी हुई है। न जाने उसे किसने बताया कि हमारी शादी तुम्हारे बदला लेने के चलते हुई है। आशी ने अभिमान को कल शाम के बारे में बताया, इस उम्मीद के साथ कि अभिमान उनकी शादी की बात करने आशुतोष के पास जाएगा। अभिमान ने सिर झटका और कहा, उसे मैंने ही बताया था। दूसरी बात, अगर उसने तुम पर हाथ उठाया है तो तुमने उसे इसके लिए मजबूर किया होगा। चलो, कोई तो है जो तुम्हारा मुंह बंद करवा सकता है। अपनी बात खत्म करके अभिमान वहां से जाने लगा। आशी अभी तक वहीं पर खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमान खुद से चलकर यज्ञ को उनकी शादी का सच बता सकता है। अब उसे इसका कारण भी समझ आ रहा था। अब मुझे सब समझ आ रहा है, तुमने यज्ञ को इसलिए सब सच बताया ताकि मेरे घर वाले हमारा डिवोर्स करवा दें। अभिमान, तुम इतने मीन कैसे हो सकते हो? आशी पैर पटकते हुए बोली। वो अभिमान से लड़ने के लिए वापस उसके केबिन में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इशिका और अभिमन्यु इस वक्त निशा के साथ उसके कमरे में थे।
अभिमन्यु की खुद की भाभी उर्वशी हमेशा उसके खिलाफ साजिश करती रहती थी, जबकि उससे अलग निशा का स्वभाव काफी शांत था। इसी का फायदा उठाकर अभिमन्यु को वहां देखकर वो बहुत खुश हुई थी। सुबह हाउस हेल्पर यहाँ सफाई करने आई थी, तब उसने मुझे तुम्हारे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो तुम्हारे आने से मुझे बहुत तसल्ली मिली है अभिमन्यु, क्योंकि अभिमान तुम्हें बहुत मानता है। तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रही हूँ, पर अभिमान सच में मेरी नहीं सुनता है, निशा ने मायूसी से कहा। अपनी बात खत्म करते ही निशा खांसने लगी थी। इशिका ने उसका हाथ सहलाया और कहा, आप अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, जितना सोचेंगी उतनी ही तबीयत खराब होगी। अब अभिमन्यु और मैं यहाँ पर आ गए हैं तो अभिमान को संभाल लेंगे। अभिमन्यु ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, इशिका बिल्कुल ठीक कह रही है, रात को उससे बात नहीं हो पाई थी। सोचा था सुबह मिलूंगा और सब मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, पर उठने पर पता चला कि अभिमान तो पहले ही ऑफिस चला गया है। हाँ, वो काम को लेकर बहुत जिम्मेदार है। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस वो आशी को इस घर में ले आए। जब अपनी पत्नी के साथ रहेगा तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और वो राजवंश फैमिली के लोगों से नहीं झगड़ेगा, निशा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो भी यही चाहती थी कि अभिमान और आशी अब साथ आ जाएं। आशी का नाम इशिका के लिए नया था। उसने अभिमन्यु की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। फिलहाल के लिए अभिमन्यु ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि वो निशा के सामने कुछ कह नहीं सकता था। डोंट वरी भाभी, मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। बाकी अगर वो आशी के साथ खुश नहीं है तो हमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए। उन दोनों की शादी हुई तब वो उम्र में काफी छोटा था। बचपन में गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता दो। वैसे भी आप आशी से मिली ही कितनी है। अभिमन्यु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके दबाव डालने पर अभिमान की जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो आशी को घर ले आए। मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ और वो लड़की सच में अच्छी है, बहुत ही प्यारी और मासूम है। हर बात अभिमान से पूछकर उसके हिसाब से करती है और रोज उससे मिलने के लिए ऑफिस भी जाती है, निशा ने बताया। ठीक है, फिर सोचेंगे, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अभिमन्यु ने बहुत ही चालाकी से बातचीत का रुख बदल दिया था। निशा के साथ नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु और इशिका दोनों अपने कमरे में पहुंच गए थे। इशिका कब से आशी के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो सही मौका ढूंढ रही थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर आए, इशिका कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे अपने करीब खींचा और गहरी सांस लेकर कहा, एक तो तुम प्रेगनेंसी में कुछ ज्यादा ही इंपेशेंट हो जाती हो, जब जानते हो तो फिर इतना सस्पेंस बनाकर रखने की क्या जरूरत है। इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो प्रेगनेंसी में ज्यादातर इरिटेट ही रहती थी और अभिमन्यु को उसके हिसाब से ही चलना पड़ता था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभिमान मुझे अपना आइडल मानता है। जिस तरह राजवंश फैमिली मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी और मैं झूठ बोल रहा था, वैसे ही इस फैमिली ने भी अभिमान की शादी करवानी चाहिए ताकि उसे कंट्रोल कर सके। उसी दिन अभिमान को पता चला कि उसकी शादी पहले से ही रजिस्टर है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त रचित का था, अभिमन्यु ने बताया। फिर उसके चेहरे के भाव सॉफ्ट हो गए थे और उसने इशिका के होठों पर हल्का सा किस करके कहा, अब सबकी किस्मत में तो इशिका सिन्हानिया जैसी लड़की नहीं हो सकती। बदकिस्मती से उसकी शादी जिस लड़की के साथ रजिस्टर हुई है उससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो उससे बदला लेना चाहता था, पर किसे पता था कि वही उसकी पत्नी बन जाएगी। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि अभिमान उस लड़की के साथ आगे बढ़े। मैं मिला हूँ उससे एक बार और वो काफी अजीब है। उसे देख कर ही नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं। नेगेटिव वाइब्स तो मुझे इस घर में हर शख्स से आती हैं, सिवाय निशा भाभी के। बस अब अभिमान से मिलना बाकी है, इशिका ने जवाब दिया। उसकी आंखों के सामने अचानक से सिद्धांत का चेहरा आ गया था। सिद्धांत के इरादे भी उसे ठीक नहीं लग रहे थे। ठीक है, फिर हम अपने प्रोजेक्ट के लिए चलते हैं। तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, वरना मेरे साथ आ जाओ। यहाँ रही तो अकेले में बोर हो जाओगी, अभिमन्यु बोला, जिस पर इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। अभिमन्यु और इशिका वहां से साथ में बाहर चले गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ एआर एम्पायर्स में आशिका के निकलने के बाद रचित उसके पीछे जा रहा था ताकि उसे रोक सके। उनकी यही कोशिश थी कि वो कैसे भी करके आशिका को प्रोजेक्ट करने के लिए कन्विंस कर सके। वॉचमैन से रचित को पता चला था कि आशिका वहां से जा चुकी थी। ज्यादा आगे नहीं गई होगी, अभी ढूंढकर बात कर लेता हूँ, वरना फिर कभी बात नहीं कर पाऊंगा, रचित बोला और तेज कदमों से चलते हुए बाहर जा रहा था कि अचानक वो आशिका से जा टकराया, जो दौड़ते हुए अंदर ही आ रही थी। तेज दौड़ने की वजह से आशिका हाँफ रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। इससे पहले कि रचित कुछ कहता, आशिका ने जल्दी से कहा, मैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ।